ホームランチャテル。विषय है रचनात्मक चिंतन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। आजकल समाज में भोगवादी जीवन व्यतीत करके मनुष्य के अंदर जो टेंशन बढ़ रहा है, जो निराशा बढ़ रही है, जो बेचैनी बढ़ रही है, उससे बचने के लिए जो मनोवैज्ञानिक हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग सिखाते हैं कि निराशा से कैसे उभरा जाए, उसको उस कला को पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं। हिंदी में उसको रचनात्मक चिंतन कहा जाता है। सबसे पहले तो ये विचार करके देखें कि हमारे अंदर निराशा आती कब है। वैसे तो हम सब जानते हैं समाज में जो भी व्यक्ति मौजूद है वो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, मनचाहा सुख प्राप्त करने के लिए वो कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है। चाहे वो पढ़ाई के बारे में हो, चाहे वो नौकरी के बारे में हो, चाहे वो व्यवसाय के बारे में हो, जैसे उसकी शारीरिक सामर्थ्य है, जैसे उसकी बौद्धिक सामर्थ्य है और जैसे उसकी आर्थिक सामर्थ्य है, हर प्रकार की सामर्थ्य को देखते हुए वो अपने लक्ष्य निर्धारित करता है। परंतु इस समय संसार की ये हालत है, इस कंपटीशन की दुनिया में एक विद्यार्थी मान लिया उसके अंदर इच्छा है मैं डॉक्टर बनूं, तो अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता है, बड़ी मेहनत करता है स्टडीज में, किसी के 90% आ जाते हैं, किसी के 95% आ जाते हैं, किसी के 97% आ जाते हैं। इसके अंदर आशा उत्पन्न होती है कि मुझको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। लेकिन जो कंपटीशन की हालत देखता है तो पता लगा कि अच्छे कॉलेज की मेरिट जो है वो 99%, 98% मार्क्स लाने के बाद भी उसको मन चाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि वहां की मेरिट 99%। कंपटीशन की दुनिया है। ऐसा नहीं है कि 98% मार्क्स वाले विद्यार्थी की बुद्धि में और 99% वाले बुद्धि में कोई अंतर है। हो सकता है 98% वाला ज्यादा बुद्धिमान, तो हर फील्ड में इतना कंपटीशन है आज के दिन कि अच्छे से अच्छा विद्यार्थी भी कई बार मनचाही चीज नहीं प्राप्त करता। चलो उसने किसी ने डॉक्टर बनना है बन भी गया डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर बनना है वो इंजीनियर बन गया, किसी ने कोई बिजनेस सेट करना है चलो मान लिया उसका बिजनेस भी सेट हो गया, लेकिन क्या यहीं पर गाड़ी रुक जाती है जीवन? इसके आगे भी तो जीवन है। एक आशा उसकी पूर्ण हो गई, मान लिया उसकी शादी ही लेट हो गई, नहीं हो रही शादी, शादी का तो एक बहुत बड़ा सुख होता है युवक के लिए, उसके कारण ही मन में निराशा आ जाती है। शादी भी हो गई, पता लगा बीबी का स्वभाव ही नहीं मिल रहा, उसके कारण निराशा आ जाती है। वो भी मान लिया ठीक ठाक हो गया, संतान किसी की नहीं हुई, यदि हुई तो ठीक ठाक नहीं हुई, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, किसी की माता पिता से नहीं बनती, इतने फैक्टर्स हैं निराशा आने के, कोई अपना प्रिय है जिसमें मेरी लाइफ डिपेंड कर रही है वो संसार से विदा हो गया। तो मनुष्य कहीं ना कहीं इस निराशा का शिकार हो जाता है। इसीलिए जो पॉजिटिव थिंकिंग है जिसको रचनात्मक चिंतन कहा जाता है उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बिना जीवन की गाड़ी बैलेंस होकर नहीं चल सकती, कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। और जब फेलियर आता है जीवन में तो मनुष्य फिर कहीं का नहीं रहता, बड़ा घबराता है, बड़ा बेचैन। तो जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो सांसारिक परिस्थितियां हैं, जो गृहस्थ की परिस्थितियां हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मुझको मिली है। अरे पत्नी जैसी मिली मिली है मुझको, मैंने थोड़ा बनाया उसको। जैसा देश मिला है मुझको, जैसा समाज मिला है मुझको मिला है। किसी को बड़ी स्ट्रांग बॉडी मिली है, किसी को बड़ी वीक बॉडी मिली है जन्म से, किसी के अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, किसी की बुद्धि ही कमजोर है। तो जो परिस्थितियां उसको मिली हैं उसमें मैं बैलेंस करके कैसे जी सकता हूं, इस कला को सीखना बहुत जरूरी है। इसके बिना जीवन ऐसा लंगड़ा है पता ही नहीं लगता कि वो ड्रेलमेंट कहां होगा, कहा जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर गई पता ही नहीं। आदमी बड़ा छटपटाता है, बड़ा निराश होता है। तो इस चीज को तो हमें बदल नहीं सकता, ये बाहरी परिस्थितियां ये मेरे हाथ में नहीं है, ये उसको मिली। इसी को कहते हैं भाग्य, इसी कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्धवश प्रभु ने जो परिस्थितियां उसको दी हैं उसमें रहकर ही मैंने जीना। फिर भी क्या मैं कोई आशा लेकर जी सकता हूं, क्या मैं जीवन की सफलता को जान कर के मेरा जीवन सफल हो रहा है मैं जी सकता हूं? तो वो एक विचारधारा है।
तब ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी की मेहनत बेकार चली गई और जिस खुशी को लेकर मैंने ये गोल बनाया था, लक्ष्य बनाया था, वो खुशी मुझको वास्तव में प्राप्त नहीं हो पाई। एक प्यास लेकर, एक तृष्णा लेकर, एक असफलता का एहसास लेकर वो बाकी जीवन जीता है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं जीवन में विफल हो गया। तो सत्पुरुष एक दूसरी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जीने का एक रास्ता ऐसा भी है जिस पर चलकर मनुष्य कभी विफल नहीं हो सकता, उसकी उन्नति लाजमी है, दुनिया की कोई ताकत उसकी उन्नति को रोक नहीं सकती, वो उन्नति समाज पर निर्भर नहीं करती, वो उन्नति बाहरी वातावरण पर निर्भर नहीं करती। इसलिए सत्पुरुष कहते हैं कि संसार में मनुष्य दो प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकता है, ये उसकी च्वाइस है, इसमें वो आजाद है। एक है भोगवादी जीवन जिसको हम सब जी रहे हैं कि अधिक से अधिक हमको एजुकेशन चाहिए, अधिक से अधिक हमको पैसा चाहिए और उस पैसे से मैं संसार के भोग इकट्ठे करता हूं, खरीदता हूं, फिर उनको भोगता हूं। ये जो वे ऑफ लाइफ है इसको भोगवादी जीवन कहते हैं। इसका जो परिणाम है या यूं कहिए इसका जो दुष्परिणाम है वो है मानसिक बेचैनी और जीवन की विफलता, अर्थात कहीं ना कहीं मनुष्य को निराशा घेर गई। दूसरा जीवन है उसको सत्पुरुष कहते हैं ईश्वर परायणता। एक है भोग परायणता और दूसरी है ईश्वर प्रायणता। लेकिन ये ईश्वर प्रायणता यदि इसको समझना है तो फिर सतपुरुष कहते हैं कि मनुष्य को अपने ही इस शरीर के विज्ञान को उस प्रकार सीखना पड़ता है जिस प्रकार शास्त्र सिखाना चाहता है। शरीर विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि मैंने बायोलॉजिकल डिटेल्स सीखनी है इस बॉडी में, कितने ऑर्गन्स हैं, गुर्दे क्या काम करते हैं, हार्ट क्या काम करता है, फेफड़े क्या काम करते हैं, इस विज्ञान की बात वो नहीं कर रहा। इस शरीर में क्या क्या चीज मौजूद है जिसका इस दुनियावी साइंस को पता नहीं है, उस साइंस को सतपुरुष जानते हैं जिसका बयान वो शास्त्रों में लिखकर या कहकर छोड़ जाते। तो यदि हमने ईश्वर परायणता सीखनी है, जीवन जीने की वो कला सीखनी है जिस पर चलकर मेरे अंदर निराशा कभी आ ही नहीं सकती, मेरी निरंतर उन्नति गारंटीड है, वो निरंतर उन्नति होगी ही होगी, यदि वो जीने की कला सीखनी है तो मुझको अपना ही विज्ञान सीखना पड़ेगा जो शास्त्र मुझको सिखाना चाहिए। तो उस विज्ञान को जरा हम देखें कि शास्त्र मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए गीता में तीसरे अध्याय में 42वां श्लोक है, देखिए वो क्या कह रहा है। ये भगवान कृष्ण का संदेश है, वहां कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसः तु परा बुद्धि या बुद्धे परतात्मसा। ये मेरा विज्ञान है, शरीर तो मैं जानता हूं, इंद्रियां भी मैंने सुन रखी है, तो मेरे अंदर जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं जिसके द्वारा मुझको शरीर का संसार का बोध होता है, जिसके द्वारा मैं इनको एंजॉय करता हूं, तो पांच ज्ञान इंद्रियां हम सब जानते हैं कि आंख देखने वाली है, कितना दृश्य का हम इसको देखते हैं, कितनी सुंदरता हम इसे देखते हैं, कान सुनने की वस्तु है, कितने राग सुनते हैं, जीभ स्वाद लेने की इंद्रिय है, कितने स्वाद लेते हैं, त्वचा सर्दी गर्मी मुलायम सख्त का एहसास कराती है, और नासिका खुशबू का एहसास करो। तो इन पांच ज्ञान इंद्रियों के भोगों के लिए इस देह का उपयोग मैं करता हूं, इस देह की मुझको जरूरत, इसीलिए गीता कह रही है कि इंद्रियां जो है ये देह से श्रेष्ठ और सूक्ष्म है, क्योंकि देह ये इंद्रियों के वास्ते, और इंद्रियेभ्यः परम मनः, और इंद्रियों से श्रेष्ठ और सूक्ष्म मन है। मन में क्या होता है, इच्छा उठती है, डिजायर उठती है, और मैं जानता हूं इस समय मेरे अंदर एक इच्छा उठ जाए कि मैंने रसगुल्ला खाना है, तो क्या करोगे यार, वो रसगुल्ला इस देह का उपयोग करके आप खरीद के लाओगे, फिर उसको खाओगे, तो जिभ्या के द्वारा मन की वो इच्छा पूरी होगी कि रसगुल्ले का मैंने स्वाद लेना, तो मन की डिजायर पूरी करने में खुशी है ना, ना रसगुल्ला लाने में खुशी है, ना खाने में खुशी है, तो खुशी किसकी है, वो मन की खुशी नहीं है, वो मन सहतु पराबुद्धि, कि मन की जो मालिक है, मन से जो परे है, मन से जो सूक्ष्म है, वो बुद्धि है, यानी मैं हूं, इच्छा मेरी है, रसगुल्ला यदि मिलता है तो मैं खुश होऊंगा, तो जिस ऑर्गन में वो डिजायर उठ रही है उसका नाम है मन, और जिस ऑर्गन के द्वारा ये डिजायर पूरी हो रही है उसका नाम है इंद्रियां, और ये डिजायर के लिए साधन जो वस्तु है जिसके द्वारा ये प्राप्त हो रहा है उसका नाम है देह या संसार। तो मेरी जो डिजायर है वो मन इंद्रियां देह और संसार के द्वारा पूरी हो रही है, उसके द्वारा मैं खुश हो रहा हूं या दुखी हो रहा हूं। तो सत्पुरुष कहते हैं कि जो जिसके ऊपर इस मन की डिजायर का असर पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, वो मैं हूं। उसका नाम गीता बुद्धि कह रही है। इसी को जीव भी गीता में कहा, यानी मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, मैं बुद्धि हूं जिसके ऊपर मन का प्रभाव पड़ता। लेकिन इसके आगे मैं कुछ जानता ही, गीता आगे मेरे बारे में और कुछ भी कह रही है। या बुद्धे परतातुसा, इस बुद्धि के ऊपर वो स्वयं है। वो कौन? आत्मा या ईश्वर जिसको कहते हैं। अतः यही सीक्वेंस महाराज की वाणी में भी आ रहा है। तन से परे इंद्री विकार, इंद्री परे मन विस्तार, मन से परे बुद्ध ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई। वो जो सुखदाई रत्न है, वो ऐसा सुखदाई रत्न है जिसको प्राप्त करके बुद्धि कभी दुखी हो ही नहीं सकती, उसकी दुख की कोई संभावना नहीं। दुख की संभावना हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट खत्म हो जाती है। वो जो चीज है बुद्धि परे रतन सुखदाई, वो सुखदाई रत्न है, वो बुद्धि के ऊपर है। जिस पर मन के ऊपर मैं हूं, मेरे ऊपर इस देह के अंदर ही वो ईश्वर सत्ता मौजूद। तो अब बताइए, यदि उस सत्ता का मुझे बोध हो जाए, मुझे ऐसी कला का पता लग जाए, ऐसी ट्रेनिंग मुझको मिल जाए, ऐसा ज्ञान मुझको मिल जाए कि उसको अपनाकर मैं उस ईश्वर को जान सकूं, उस ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकूं, तो फिर तो वो तो सुख का सागर है। रतन सुखदाई है ना, वो सुख का सागर है। तो मेरे जीवन की निराशा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, मुझको फिर पछताना नहीं पड़ता। आपने कभी देखा है राम को पछताना पड़ा हो, कृष्ण को पछताना पड़ा हो, माता मंगतराम जी को पछताना पड़ा हो, गुरु नानक को पछताना पड़ा हो? सुना है आपने कभी? आपने मनुष्यों के बारे में आम देख लीजिए, पछताना पड़ता है। और देखिए गीता के 15वें अध्याय में 7वां श्लोक है, वहां ये सत्पुरुष का जो विज्ञान है वो क्या कह रहा है। ये तो मेरा था एनालिसिस था कि मेरी देह इंद्रियां मन बुद्धि और आत्मा या ईश्वर, ये विज्ञान है। एक दूसरा विज्ञान गीता दो क्या बयान कर रही है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षक। ये मेरा विज्ञान। वहां कहते हैं कि ये जो जीव है इसको अभी बुद्धि कहा गया, वो कहते हैं कि ये मेरा सनातन अंश है। ईश्वर क्या कह रहा है? ये जीव मेरा सनातन अंश है। सनातन उसे कहते हैं जिसका संबंध कभी टूटता नहीं, हमेशा से। और इस जीव के अंदर सामर्थ्य क्या है? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षक। जिस समय इस देह की मौत होती है उस समय इस जीव की सामर्थ्य क्या है कि ये जीव मन सहित पांचों इंद्रियों को अपने साथ ले जाता है, इस देह में छोड़ता नहीं। ना इंद्रियां बसती हैं, ना मन बसता है, ये जीव के संग ही इस देह का त्याग कर देता है। ये सामर्थ्य ईश्वर ने इस जीव को दे रखी। इसलिए इस जन्म का तुम मेरी जितनी भी कमाई है वो निरर्थक नहीं आती। रुपया कितना भी कमा लो, संपत्ति कितनी भी कमा लो, डिग्रियां कितनी भी कमा लो, कुछ आपके साथ नहीं जाती। अगला जन्म यदि मनुष्य का मिल गया फिर ABCD पढ़नी पड़ेगी। लेकिन यदि आपने स्वभाव में परिवर्तन किया, सतोगुणी स्वभाव बना लिया, सेवा कर निष्काम सेवा करी, ईश्वर की भक्ति की, ये सारे संस्कार आपके मन के साथ आपको बचपन से ही प्राप्त हो, तो ये कितनी ठंडक देंगे आपको, ये आपको। तो ये मेरा विज्ञान है कि ईश्वर ने मुझको ये पावर दे रखी है कि मैं अपने मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जा सकता हूं, मौत के साथ वो खत्म नहीं हो, इसी के लिए तो मैं जी रहा हूं। मन में इच्छा होती है तब स्वादिष्ट खाने का मजा आता है, मन में इच्छा ना हो तो बढ़िया से बढ़िया खाना रख दो आपको मजा ही नहीं आएगा, कोई मेरी इच्छा ही नहीं। तो संसार का सुख आप तभी एंजॉय करते हो जब आपके अंदर उसकी भोगने की इच्छा मौजूद हो। तो सारा खेल मन का है, तो मन की इच्छा जब पूर्ण होती है तो खुश कौन होता है, मैं खुश होता हूं, नहीं होती तो दुखी कौन होता है, मैं दुखी होता हूं। तो इसीलिए ये दूसरा जो विज्ञान है मेरे बारे में वो ये है कि मैं ईश्वर का अंश हूं और ईश्वर जो है वो सुख रूप है, आनंद रूप है, शांति रूप है, और मैं उसका सनातन अंश हूं, एक पल भी मैं उससे अलग हो ही नहीं सकता। लेकिन कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझको किसी ने सिखाया ही नहीं कि मैं तो समझता हूं बाहरी जो माता पिता है ये मेरे असली माता पिता है, मुझको ये पता ही नहीं है कि असली पिता तो मेरा ईश्वर है। तो पिता की ओर मैं अग्रसर हूं ये तो गुरु सिखाता है, ये तो शास्त्र सिखाते हैं। इसलिए असली जो तेरा उद्धार चाहने वाले हैं, तेरा कल्याण चाहने वाले हैं, वो गुरु हैं और शास्त्र हैं। अब एक और बात आती है, वो जो ईश्वर मेरे शरीर में उपस्थित है वो करता क्या है? देखो शास्त्र के द्वारा ही तो निर्णय होगा, लोग क्या कहते हैं इससे निर्णय नहीं होता। शास्त्र अथॉरिटी है, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। गीता कब से चली आ रही है, हजारों वर्ष हो गए, गीता का ज्ञान वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, वो सारी दुनिया से एक्सेप्ट करता। तो देखो ईश्वर का कार्य क्या है मेरे शरीर में, वहां आता है 18वें अध्याय में 61वां श्लोक है, वहां कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृत देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सारे प्राणियों का, मैं प्राणी हूं ना, प्राणी मेरा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि प्राण मेरे अंदर चल रहा है इसलिए मेरा नाम प्राणी पड़ गया। तो ये जो जीव है यानी मैं हूं, तो कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृत देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सारे प्राणियों का जो ईश्वर है वो उनके हृदय में निवास करता है, अर्थात अंतर्यामी। जैसे मैं इस देह में निवास कर रहा हूं, मेरा ईश्वर भी इस देह में ही निवास कर रहा है। अब वो कर क्या रहा है, वो कहते हैं कि भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणियों को, इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित जीवों को वो अपनी माया के द्वारा संसार में घुमाता है, भरमाता है। इसका मतलब मैंने कहां पैदा होना है, कौन मेरे माता पिता बनने हैं, किससे मेरी शादी होनी है, मेरे जीवन में क्या सुखाएंगे क्या दुखाएंगे, कैसी सामाजिक परिस्थितियां मुझको जीने के लिए मिलेंगी, ये सब आपका जन्म लेते ही निर्धारित हो जाता है। और क्यों, क्योंकि प्रभु ने ही तेरे ही प्रारब्ध के अनुसार ये रचना रची, इसका कारणकर्ता कोई और नहीं, कारणकर्ता तेरा प्रारब्ध पुरुषार्थ है, प्रारब्ध कर्म है तेरा, तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार तुझको ये परिस्थितियां जीने के लिए दी गई। लेकिन परिस्थितियां कैसी भी तेरी क्यों ना हो, वो फैसिलिटी यहां भी तुझको दी गई है, तू ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को जान सकता है, इस देह के अंदर ही ईश्वर से भेंट कर सकता है, जिससे भेंट करके तेरे जीवन का हर दुख खत्म हो जाए। तो ये जो ईश्वर की क्रिया है जो वो मेरे लिए करता है, ये अंतर्यामी ईश्वर बैठा बैठा ये मेरे प्रार्थना के अनुसार मेरे जीवन को चलाता है, ये ईश्वर का रोल है, ऐसे ही नहीं है वो ईश्वर इसके अंदर। और देखिए उस प्रभु का आदेश क्या है, उस प्रभु का एक आदेश भी, तो मेरे जीवन की चाबी प्रभु के हाथ में है, तो इसलिए मैं प्रभु के हाथों में पराधीन हूं, लेकिन एक मामले में स्वतंत्र से मुझको कर रखा हूं। तो उसके लिए आदेश क्या है, वो कहते हैं अगले ही श्लोक में, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्तसि शाश्वत। कि इसलिए तू हर प्रकार से, हे अर्जुन तू हर प्रकार से मेरी शरण में आ। यदि तू ऐसा करता है तो कहते हैं तो प्रभु की कृपा से या मेरी कृपा से तू परम शांति को और इस सनातन परम धाम को प्राप्त, जो कभी उससे छिन नहीं सकता, जो शांति मिल गई वो कभी भंग नहीं हो सकता, चाहे तेरी सामाजिक परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। जैसे कि भगवान बुद्ध है, हम जानते हैं, नाम सुन रखा है उनका, उनके जीवन में एक घटना घटी, एक एकांत स्थान में उनकी अंगुली माल डाकू से भेंट हो गई। वो तो जो भी मिलता था उसकी उंगली काट लेता था, गले में हार बना के पहन लेता, लेकिन बुद्ध की शांति क्यों नहीं भंग हुई, ऐसे खतरनाक व्यक्ति के सामने खड़े होकर उनकी शांति भंग नहीं। और क्या प्रभाव हुआ उनकी शांति का, अंगुली माल डाकू उनका शिष्य बन गया और उसको भी शांति प्राप्त हुई। तो जिसने, जिस जीव ने अंतर्यामी ईश्वर की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिससे उस जिस जीव का उस ईश्वर से संबंध बन गया, उसके अंदर क्या शांति आ जाती है, उसके अंदर क्या सामर्थ्य आ जाती है, ये तो ये घटना बता रही है। देखने में तो वो इंसान ही है ना, देखिए ये सामर्थ्य कहां से आ गई। तो सत्पुरुषों के जीवन की घटनाएं हमको सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि ऐसा क्या हो गया कि उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ गई कि एक डाकू इतना खतरनाक सामने खड़ा है, उनके अंदर कोई भय नहीं, उनके अंदर कोई बेचैनी नहीं। और उसका प्रभाव क्या है उस डाकू के ऊपर, कि उस डाकू का जीवन ही बदल जाता है, वो उनका शिष्य बन जाता है। तो फिर वो तो राजकुमार थे, अपनी राजगद्दी छोड़कर चले आए थे उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो सुख सुविधा की कमी नहीं थी, लेकिन उसमें शांति नहीं थी, ये वही जानते थे। तो उस शांति प्राप्ति की खोज में वो निकले, तो प्रभु तो मदद करते हैं, वो अंतर्यामी था, सदैव मेरे संग है, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करी और अपने से मिलन उन्होंने करा दिया। उस मिलन के बाद उनकी क्या स्थिति हो गई कि दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई परिस्थिति उनके अंदर निराशा पैदा नहीं कर सकती, बल्कि निराश व्यक्तियों में भी आशा का संचार करने वाली उनकी ताकत हो गई। तो इसीलिए जब ये विचार हमारे मन में आता है, ये ज्ञान हमारे अंदर पैदा होता है, तब हम जानना चाहते हैं कि फिर मैं क्या करूं। तो अब देखिए उसके लिए सत्पुरुष का एक वचन केवल पढ़ रहा हूं कि वहां सत्पुरुष ने मार्गदर्शन किया है, क्योंकि अल्टीमेटली यदि मैंने चलना है इस मार्ग पर तो किसी ना किसी गुरु का, किसी ना किसी सत्पुरुष का आसरा लेना ही पड़ेगा। तो सत्पुरुष का या गुरु का आसरा लेने का मतलब यह नहीं है कि वो शारीरिक रूप से मेरे संग हो, यह जरूरी नहीं, क्योंकि आप यदि भारत के इतिहास को देखो तो कृष्ण शारीरिक रूप में दुर्योधन के संग भी थे और अर्जुन के संग भी थे, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात मानी, उसका कल्याण हुआ, दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी, उसको बुरे दिन देखने पड़े, उसको मौत का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार राम के जीवन में देखिए कि कहे भी है भरत भी है, राम की उपस्थिति होते हुए भी केकई ने उनको वनवास दे दिया, वनवास दिलवा दिया, लेकिन भरत राम की अनुपस्थिति में भी, राम तो वनवास चले गए, भरत ने भक्ति की और जीवन सफल कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि फिजिकल प्रेजेंस गुरु की आपके संग जरूरी है, बात यह है तो उनका जो मार्गदर्शन है उसको यदि मैं जीवन में अपनाता हूं तो मैंने गुरु धारण कर लिया। इसीलिए उसका जो मार्गदर्शन है वो गुरु का शास्त्र ही करता है। इसलिए मैं एक वचन पढ़ रहा हूं तो वो इस जीवन के बारे में क्या कह रहे हैं। ये शुद्ध वैराग्य चैप्टर है समता विलास में, उसका 51वां वचन है, मानुष जन्म में उत्तम कर्तव्य, उत्तम बोध, उत्तम सूझ यह ही है कि बुद्धि को सत विचारों की ठंडक में ठंडा करके सत अनुराग के मार्ग में दृढ़ किया जावे, जिससे तमाम विकार शांत होकर के निर्विकार स्वरूप अविनाशी आत्मा के बोध को प्राप्त होवे, जो नित मंगल स्वरूप है। विकारमयी जीवन से निर्विकार होना ही असली उन्नति है, असली कल्याण, असली पुरुषार्थ है। जिसने अपने मानसिक विकारों से विजय हासिल नहीं की है वो मानुष जन्म में आकर के भी कुछ जीवन की सार को प्राप्त ना कर सका और उल्टा पतित मार्ग को धारण करके अति नीच गति को प्राप्त हुआ, ऐसे जीवन के भेद को जानना चाहिए। तो यहां पर जो शास्त्र का मार्गदर्शन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म में उत्तम कर्तव्य, उत्तम बोध, उत्तम सूझ यही है कि बुद्धि को सत विचारों की ठंडक में ठंडा करके सत अनुराग के मार्ग में दृढ़ किया जावे, जिससे तमाम विकार शांत होकर के निर्विकार स्वरूप अविनाशी आत्मा का बोध प्राप्त हो सके। इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्धि यानी मैं कब ठंडा हो सकता हूं, किस साधन से ठंडा हो सकता हूं, अर्थात मेरे अंदर शांति किन विचारों के द्वारा आ सकती है। वो कह रहे हैं कि वो सत विचारों के द्वारा। सत विचार कौन से होते हैं, जितने भी सतपुरुषों ने विचार पेश किए हैं शास्त्रों के रूप में, वाणी के रूप में, ये सत विचार है। तो मेरा ये मेरी प्राइम ड्यूटी है ये, क्या कि इस बोध को, इस नॉलेज को मैं सीखूं और उसकी सूझ प्राप्त करूं। सूझ कहते हैं विजडम को। तो सूझ किसे कहते हैं, और सूझ और ज्ञान में क्या अंतर है, बोध में क्या अंतर है। नॉलेज तो जानते हैं, पढ़ के भी हम सीख सकते हैं, सुन के भी सीख सकते हैं, लेकिन उस नॉलेज के अनुसार, उस ज्ञान के अनुसार जब मैं प्रैक्टिकल जीवन अपनाता हूं, जब उसकी प्रैक्टिस करता हूं, उसके बाद जो मुझको एक्सपीरियंस के बाद जो नॉलेज मेरे अंदर रिटेन कर जाती है, जो ज्ञान मेरे अंदर टिक जाता है, उसको सूझ कहते हैं। इसे कहते हैं कि बुजुर्ग लोगों का के पास बैठा करो। क्यों बैठा करो, क्योंकि उनको जीवन का ज्ञान ही नहीं होता, जीवन का अनुभव होता है। जिस ज्ञान को आपने जीवन में अपना लिया वो आपके अनुभव में आ गया, वो आपकी सूझ बन गई। तो कहते हैं कि सबसे उत्तम बोध और सबसे उत्तम सूझ क्या है कि बुद्धि को सत विचारों की ठंडक में ठंडा किया जावे, अर्थात जो मेरा रात दिन मानसिक चिंतन चलता है, मेरी जो सोच चलती है, वो क्या चलनी चाहिए, जो सत्पुरुषों ने शास्त्रों की रचना की है, जो वाणी के रूप में विचार प्रकट हुए हैं, उसके अनुसार मैंने जीवन के बारे में डे एंड नाइट चिंतन करना चाहिए। जिसकी बुद्धि उस चिंतन में लमी रहेगी उसकी बुद्धि में ठंडक बनी रहेगी। जहां वो चिंतन छूटा और ये भोगों का चिंतन शुरू हुआ, ये नाशवान दुनिया का चिंतन शुरू हुआ, आपकी बेचैनी शुरू हो जाएगी। तो ये चिंतन क्यों चाहिए, वो कहते हैं ठंडा करके सत अनुराग के मार्ग में दृढ़ किया जावे। सत अनुराग, सत कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर के प्रेम का जो मार्ग है उस मार्ग में ये विचार आपको दृढ़ कर देते हैं, अर्थात अंतर्यामी ईश्वर को जानने का शौक आपके अंदर पैदा हो जाता है, उसके लिए पुरुषार्थ करने की हिम्मत आपके अंदर जाती है। तो जब आप उसकी ओर अंदर बढ़ते हो, उसकी ओर अग्रसर होते हो, तो क्या होता है, कहते हैं कि जिससे तमाम विकार शांत होकर के निर्विकार स्वरूप अविनाशी आत्मा के बोध को प्राप्त होवे, जो नित्य मंगल स्वरूप है। तो वो प्रभु कल्याण स्वरूप है, मेरे अंदर विराजमान है, लेकिन मुझको बताने वाला कोई नहीं है, इसी में बाहर में की दौड़ में शामिल हो गया। सब बेचैन हो रहे हैं, एक दो नहीं, आइटम्स बेचैनी के सबके अलग अलग है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। बेचैन सभी है, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से। तो वो बेचैनी को दूर करने का जो रास्ता है वो ईश्वर से होकर जाता है, और उस ईश्वर का जो मार्ग है वो गुरु तय करके दिखाता है। इसलिए गुरु का जीवन यदि आपके सामने नहीं है तो आपको ये विश्वास ही नहीं आएगा कि ईश्वर है, और उसके बिना मेरा जीवन असंभव है, ये आपको विश्वास ही नहीं आएगा। मेरे पूरे जीवन में ईश्वर ऐसे रमा हुआ है जैसे कि मेरे शरीर के अंदर जान रमी हुई, शक्ति रमी हुई, मेरे सारे जीवन में ईश्वर का ही रोल है, क्योंकि प्रारब्ध के अधीन है, और प्रारब्ध चक्र को मैंने नहीं बनाया है, वो ईश्वर ने निर्धारित करके मेरे साथ बंडल के रूप में बांध दिया है, जो हमको कहते ना जन्म के साथ जन्मपत्री साथ तैयार हो जाती है। तो जन्मपत्री क्या है, तेरे जीवन में क्या क्या घटनाक्रम घटेगा, वो प्री डिक्लेरेशन है एक तरह से। अच्छा ज्योतिषी हो तो पता लगा सकता है, बता सकता है, ठीक ठीक बता सकता है, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता। पता लग भी जाए तो मैं बेचैनी लेकर जीऊंगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई तो माइनस पॉइंट होगा। तो ये अच्छा ही है कि ना पता लगे। मैं तो ये कहता हूं कि जन्म पत्री के बारे में कभी भी जानने की कोशिश मत करो, जानने की कोशिश ही करनी है तो ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश करो, जो आपको ठंडक ही ठंडक देगी, आपको बेचैनी ये ज्ञान कभी नहीं देगा, सारी बेचैनी से ये ज्ञान आपको मुक्त कर। तो होता क्या है, जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है उसके जीवन के अंदर, उसके मन के अंदर जो विकार है, जिसको कैटेगराइज किया है शास्त्रों ने पांच विकारों में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो ये जो पांच विकारों के रूप में जिसको कैटेगराइज किया है, ये पांच विकार सारा इसका फैलाव ही है, जितना भी हमारा ये संसारी जीवन है ये पांच विकार का फैलाव है। तो इसीलिए जो मनुष्य भी भोगवादी जीवन व्यतीत करेगा, संसारी जीवन में ही उसका लक्ष्य होगा, वही उसका चाव होगा, तो उसने धोखा खाना जरूर है, दुनिया की कोई ताकत उसको बेचैन होने से रोक नहीं सकती। इसीलिए वाणी कहती है कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया जिस शोभा पाई करता। जिसने उस ईश्वर विज्ञान को जाना, ईश्वर की शोभा को जाना, वही सुखी इंसान हो सकता है, लेकिन राजा से लेके रंग तक सब बेचैनी को लेकर जीते हैं, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जीवन में बना रहता है जो उसके मन में निराशा पैदा करता है, सारी उम्मीदों पे पानी फेर देता है। इसलिए जो ये सकारात्मक चिंतन है, साइकोलॉजिस्ट इसको नहीं जानता, सही अर्थों में दुनिया का कोई भी मनोवैज्ञानिक इस पॉजिटिव थिंकिंग को नहीं जानता, इसको केवल सतपुरुष जानते हैं, केवल शास्त्र जानते हैं या गुरु जानते हैं। इसे उनका, उन्होंने जो मेरे जीवन का विज्ञान सिखाया है, ये उस विज्ञान को मैंने शास्त्रों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से सीखने की कोशिश नहीं की तो मैं सारी जिंदगी भटकता रहूंगा, और इसी जन्म में नहीं भटकूंगा, अगले जन्म में भी भटकूंगा, क्योंकि विज्ञान तो ये शास्त्र गलत नहीं कहते। गीता ने कह दिया कि ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, मना षष्ठानी इंद्रियाणी, ये जो छठे छह इंद्रियां हैं मन सहित पांचों इंद्रियां, ये जीव संग लेकर जाता है और ये पावर ईश्वर ने इस जीव को दे रखी है। तो इस जन्म का सारा कर्म फल, चाहे वो पाप के रूप में है चाहे वो पुण्य के रूप में है, अच्छे कर्म है दुष्कर्म है, सबका फल स्वभाव के साथ मेरे संग ये बंडल बंधकर जाता है। अगला जन्म उसी के अनुसार मुझको फिर परिस्थितियां मिलती हैं, उसी के अनुसार मेरे जन्म में सुख आते हैं और दुख आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चलता है वो ये जानता है कि तीन गुण इस प्रकृति में है, एक तमोगुण है, एक रजोगुण है, एक सतोगुण है। तमोगुण वो है, आप देखते होंगे कुछ ऐसे मनुष्य होंगे जो राक्षसी स्वभाव होता है, जो पाप करते हैं दूसरों को दुख पहुंचाते हैं अपने कर्मों के द्वारा। रजोगुणी वो जीव होते हैं जो भोग विलास करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, खूब भोग इकट्ठे करते हैं, खूब भोगते हैं, जिनकी ये तमन्ना है। लेकिन इसका परिणाम क्या है इस रजोगुण का? रज साहतो फलम दुखम, गीता करिए, इस रजोगुण का परिणाम दुख है, परिणाम के रूप में उनको मानसिक बेचैनी ही प्राप्त होती है। लेकिन तीसरा जो गुण है वो सतोगुण है, सतोगुण मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाता है। तो सतोगुण कौन होता है? उसके अंदर दूसरों से सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, उसके अंदर दूसरों का दुख दूर करने की इच्छा होती है, अर्थात सेवा भाव होता है। उसके जीवन में भोग मर्यादा में होते हैं, अर्थात सादगी वाला जीवन होता है। उसके अंदर सत्संग के प्रति रुचि होती है, शास्त्रों को पढ़ने के प्रति रुचि होती है। ऐसे लोगों का संग करता है जो इस सतमार्ग पर चलते हैं, ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार से वो शास्त्र का स्वाध्याय करता है, सत्संग का श्रवण करता है, जीवन के भोगों को मर्यादा में भोगता है और ईश्वर का सिमरन करता है, क्योंकि अंतर्यामी ईश्वर से भेंट सिमरन के द्वारा हो सकती है। तो ये जो बाहरी क्रियाएं हैं इसको वो सतोगुणी के रूप में जीवन में धारण करता है और अंतर्यामी प्रभु की सिमरन के द्वारा याद करता है, तब जाकर वो प्रभु कृपा को प्राप्त करने का पात्र बनता है। तो अंतर्यामी प्रभु की जब इस जीव को कृपा प्राप्त होती है तब इसके जीवन में वो सुख आता है जो तो दुनिया की कोई ताकत, यहां तक कि मौत भी उसको इस जीव से नहीं छीन सकती। चाहे बिल्कुल फक्कड़ क्यों ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन वो परम सुखी होता है बुद्ध की तरह से, परम सुखी होता है कबीर की तरह से, परम सुखी होता है माता मंगत राम की तरह से, परम सुखी होता है राम की तरह से, परम सुखी होता है कृष्ण की तरह से। सांसारिक परिस्थितियां चाहे इनकी कैसी भी क्यों, राम वनवास में है, कृष्ण युद्ध में है, लेकिन माता मंगत राम जी जंगल में है, लेकिन उनका आनंद किसी हालत में भी कम नहीं हो रहा है। प्रेमी उनके शिष्य जंगल में ही उनके पास बैठना चाहते हैं, उस शांति को प्राप्त करने, तो उनके अंदर से शांति बाहर फूट रही है। डाकू भी उससे लाभ उठा रहे हैं, हम जैसे बेचैन लोग भी उससे लाभ उठा रहे हैं, तो वो कमाई मैं क्यों नहीं कर सकता? मात्र उस गुरु का पर विश्वास मैंने लाना है और जैसा वो कह रहा है उसके अनुसार मैंने जीवन व्यतीत करना है और इस अपने जीवन विज्ञान को मैंने शास्त्र के द्वारा सीखना है। यदि मैंने ये काम किया तो मेरी पॉजिटिव थिंकिंग बनेगी, वो थिंकिंग मेरी हर निराशा को खत्म कर देगी, फिर दुनिया की कोई ताकत मुझको निराश। ओम ब्रह्म सत्य।